اسماء الحسنی پر غور کے سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام المجید پہ بات کریں گے۔ المجید کا لفظ مجد سے ہے، میم جیم دال، اس کا معنی ہوتا ہے عزت اور شرف والا۔ اسی طرح الماجد بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے۔ پہلے ہم المجید کو دیکھیں گے، بلند پایا، بڑی شان والا، بزرگ اور برتر، یہ سب نام ہے۔ سورۃ ہود کی آیت 73 میں آتا ہے انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ، صاحب عزت و شرف کے معنوں میں، اور دوسرا یہ معنی استعمال ہوتا ہے کریم کے معنوں میں، کثیر العطا، بہت عطا کرنے والا، بہت نفع دینے والا۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، ہر اس چیز سے اعلیٰ ہے، اوپر ہے جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ابو عبیدہ اس نام کی تعریف میں کہتے ہیں کہ المجید جل جلالہ ایسی بزرگی والی ذات کہ جو ساری تعریفوں کے لائق ہو۔ دنیا میں انسان بہت ساروں کی تعریفیں کرتا ہے نا، لیکن جس کی ساری تعریفیں ہو جائیں، یعنی جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، اس کو مجید کہتے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں المجید جل جلالہ وہ ذات ہے جس کی شان بزرگی والی ہے اور وہی تمام تعریفوں کے قابل ہے اور نالائکیوں کے باوجود بھی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی لائق ہے کہ نالائق ہے، وہ سب کو دیتا ہے، سب کو دینے والا ہے، جو بزرگی والا، تعریف والا اور بہت کریم ہے۔ اسی طرح خطابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات بڑے وسیع کرم والی ہے، وہ ذات جو شرافت و کرامت والی ہے، اس کے افعال حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی عطائیں اور بخششیں بے شمار ہیں، جو اپنی ذات میں جمیل ہے اور اپنے افعال میں احسانات اور انعامات کی سخاوت کرنے والی ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر اس نام کے بارے میں کہتے ہیں المجید وہ ذات ہے جو اپنے تمام افعال اور اقوال میں تعریف والی اور ذات و صفات میں بزرگی والی ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں المجید وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ احسانات کا معاملہ کرنے والی ہے۔ علامہ زہری ہیں، وہ فرماتے ہیں المجید وہ ذات ہے جو اپنے افعال کی وجہ سے بڑی ذات ہے، اس کی بزرگی اس کی مخلوق پر اس کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ تو ذات پیارے ناموں والی، کسی کو دنیا میں کچھ ملا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ملا۔ آج دنیا میں کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اصل میں وہ کیوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ تو کسی انسان کی بھی تعریف کریں گے، اصل میں وہ المجید کی تعریف ہوگی، اس کی بزرگی، اس کی شان، اس کی عطا، اس کا فضل، اس کو سوچتے جائیں گے لوگوں کی عظمت دلوں سے نکلتی جائے گی اور اس ذات کے ساتھ گہرا تعلق دل میں آنے لگے گا۔ دو بار یہ نام قرآن پاک میں آیا ہے صفت کے طور پر، اور دو جگہ کریم کی صفت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو سورۃ بروج کی آیت 15 میں آتا ہے ذو العرش المجید، اور دوسرا سورۃ ہود کی آیت 73 میں انہ حمید مجید۔ اور قرآن کریم کے لیے بھی ایک جگہ یہ لفظ آیا، کیا؟ بل ہوا قرآن مجید، سورہ بروج ہی کی آیت 21 ہے، اور دوسری جگہ قاف والقرآن المجید، سورہ قاف کی یہ پہلی آیت ہے، یہاں آیا ہے۔ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے آخر میں بھی اسی اسم مبارک کا ذکر ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے درود؟ اللہم، پہلا لفظ کیا ہے؟ اے اللہ، اور آخری لفظ کیا ہے؟ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا اور بزرگی والا ہے۔ بیچ میں اللہ کے نبی پہ درود ہے، लेकिन आगाज़ और इख्तिताम अल्लाह ताला के साथ है, अल्लाह के नाम के साथ है। दो मुबारक पाक नाम हमीद व मजीद। हमारे असलाफ कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अल्लाह ताला के तमाम अस्माए हुस्ना के कायम मुकाम है। यानी लफ्ज़ जब हम अल्लाहुम्मा कहते हैं ना, तो गोया के सारे ही नाम इस्तेमाल हो गए। इसके ज़रिए दुआ करना ऐसे ही है जैसे अस्माए हुस्ना के ज़रिए दुआ की जाए। इमाम इब्ने कय्यम की एक किताब है जलाउल इफहाम, इसमें उन्होंने इस पे बहुत प्यारी बहस की है कि अल्लाह ताला के ये दो नाम हमीद व मजीद अल्लाह ताला की तमाम सिफाते जलाल और जमाल के आईना दार हैं। हमीद वो जिसकी ज़ात में वो सारे महासिन और कमालात हों, जिनकी बिना पर वो हर एक की हम्द और सताइश का मुस्तहिक और सजावार हो। यानी हमीद क्या है कि दूसरे उसकी तारीफ करें, और मजीद क्या है जिसको ज़ाती जलालो जबरूत और अजमतों की बरियाई बदरजे कमाल हासिल हो। तो गोया कि इन्नका हमीदु मजीद से क्या पता चला कि अल्लाह ताला की तमाम सिफात शान दूसरे भी उसकी तारीफ़ें करें और कोई ना भी करे तो वो अपनी ज़ात में खुद मजीद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। कभी आपने दुरुश्री पढ़ते हुए अल्लाह ताला के इन नामों पे गौर किया है कि कैसे अल्लाह ताला अपने दो नबियों के तذکرے के साथ अपनी तारीफ़ों को लाता है। इसी तरह कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और बरकतों का तذکرہ है। वहाँ भी सूरत हूद में फ़रिश्तों ने क्या कहा था, रहमतुल्लाही व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैती इन्नहु हमीदुम मजीद। और आप देख रहे हैं कि सूरह हूद में ही कसरत से इस नाम का तذکرہ है। जब इंसान अल्लाह के नबी को हिदायत और तालीम का मंबा समझता है ना, और ये सोच लेता ना कि इस नबी के ज़रिए से हमें अल्लाह की पहचान हुई, अल्लाह ताला से मोहब्बत हुई, तो उसके दिल में उस नबी की और मोहब्बत बढ़ने लगती है। गोया कि आप कह सकते हैं कि दुरूद शरीफ में अल्लाह ताला के नामों का और नबी सल्लम पर दुरूद का आना इस बात का इजहार है कि जो बंदा अल्लाह की तरफ बुलाने का ज़रिया बने, उसके लिए बंदे के दिल में नरम गोशा आना चाहिए, उसकी मोहब्बत आनी चाहिए। नबी से मोहब्बत और उनसे हमारा ख़ास ताल्लुक़ क्यों है? इसलिए कि उन्होंने हमें अल्लाह ताला से जोड़ा, और अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रखता। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे मुहसिनों की बारगाह में जब अकीदत और मोहब्बत का हदिया रखा तो उसके साथ अपना नाम जोड़ दिया। हम जब ये दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं तो हम भी असल में इसी बात का इजहार करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात यकता है और उसने हमारे पास इस नबी को भेजा रहमत बनाकर। अब देखें तो सिर्फ दुरूद व सलाम से शिर्क की जड़ कट जाती है। अल्लाह ताला के नाम का इस तरह से आना और अल्लाह के नबियों का इस तरह से जिक्र करना इस बात की दलील बन जाती है कि दीन वही है जो अल्लाह ने अपने नबियों के ज़रिए दिया। इसके बाद कोई किसी ज़रिए से मिला हुआ इल्म, कोई बात वो हुज्जत नहीं हो सकती। फिर ऐसा इंसान अल्लाह के नबी के सिवा किसी और की कब्र पे कैसे बैठ सकता है? वो कोई और दर कैसे पकड़ सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्ला इंदा कब्री समेतुहू व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिख्तुहू। जो शख्स मुझ पर मेरी कब्र के पास दुरूद पढ़े मैं इसे खुद सुनूंगा, और जो शख्स मुझ पर दूर से दुरूद शरीफ पढ़े वो मुझे पहुंचाया जाता है। तो अल्लाह ताला इंसान को फोकस करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कर्ब और शिद्दत हो, तकलीफ़ हो, तो उस वक्त ये दुआ पढ़ी जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो नहायत अजीम बुर्दबार है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो अर्श अजीम का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही आसमानों और ज़मीन का रब है और अर्श करीम का रब है। ये सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि जब इंसान किसी गम में आता है ना तो इस दुआ को पढ़ता है। क्यों? इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला की सिफात का तस्करा है, अल्लाह ताला के नामों का तस्करा है। जो बंदा इस तरह से तौहीद को अपने दिल में बिठा ले, अल्लाह ताला से मोहब्बत करे, फिर अल्लाह ताला उसके दिल को खोल देता है। अब हमने इस नाम को सुन लिया अल-मजीद के बारे में, हम क्या करें, हमारा क्या अमल होना चाहिए, कैसे ताल्लुक़ पैदा करें इस ज़ात के साथ कि जो मजीद भी है, जो माजिद भी है, इसी लफ्ज़ से फिर अमजद भी है। सारी बुजुर्गियाँ उसकी, दूसरों की सारी बड़ाइयाँ दिल से निकाल दें। मखलूकात को जो अज़मत मिलती है ना वो आर्जी और फ़ानी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात को जो अज़मत मिली है वो गैर फ़ानी है। अल्लाह ताला की बड़ाई दिल में आ जाए, किसी और की बड़ाई ना आ जाए। असल बात ये है कि ऐसे तमाम लोग जो अल्लाह ताला की बड़ाई को मान जाते हैं, फिर उनके अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, फिर वो अंदर से इतने मज़बूत होने लगते हैं कि वो इस बात से भी बेनियाज हो जाते हैं कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि नहीं। फिर वो सेल्फ़ प्रेजिंग नहीं करते, वो लोगों की तारीफ़ों को देख के आगे बढ़ते और तारीफ़ें ना हो तो पीछे नहीं हटते। उनका हाल तो ये है कि बस वो अल्लाह की तारीफ़ों के गुन गाते हैं। हम सब भी अपने दिलों का जायज़ा लें, अल्लाह की तारीफ़ सुन के ज़्यादा खुशी होती है या अपनी तारीफ़ों को सुन के ज़्यादा खुश होते हैं? क्या वाकई हम वो काम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि लोग हमारी अज़मत दिल में बिठाएं, या अल्लाह की अज़मत बढ़ाना चाहते हैं? अगर कहीं इंसान दीन की खिदमत के मनसब पे फायज़ है तो जायज़ा ले अपनी तालीमात का कि मेरी इस तालीम के नतीजे में लोगों के दिल में अल्लाह की अज़मत बढ़ रही है, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का कुर्ब बढ़ रहा है, या लोग मेरे ही फ़ैन होते जा रहे हैं और मुझे ही आइडियलाइज करने लग गए हैं। अगर कहीं ऐसी बात मिल जाए ना कि उसकी तालीम में सिर्फ अपनी ज़ात की बात आ गई, तो उसको फौरन तौबा करनी चाहिए और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, जो खूब बड़ा है, जो सब कुछ करने वाला है। नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, व तआला जद्दू का, ए अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है। वो जद का लफ्ज़ भी इसी मजद में ही है, शान, इज्जत, बुलंदी, मर्तबा, सब कुछ उसके पास है। उसने दुनिया में क्या कुछ पैदा नहीं कर दिया, लेकिन लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि तारीफ़ें करने वालों को ज़्यादा दे और तारीफ़ें ना करने वालों को कम दे। बाज़ दफ़ा उनको और ज़्यादा देने लगता है जो उसकी तारीफ़ तो क्या उसकी शान में गुस्ताखियां करने लगते हैं। और जब एक दफ़ा दिल में अल्लाह की बुज़ुर्गी और बड़ाई आ जाती है ना, तो इंसान को सूलियों पे क्यों ना चढ़ा दिया जाए, कांटों पे चिला दिया जाए, उनकी खाल खिंचवाई जाए। इंसान उस रास्ते से पीछे नहीं हटता, क्यों? क्योंकि दिल पे अल्लाह की अज़मत का सिक्का बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी बड़ाई पैदा कर दे, दिलों में डाल दे, और हम सब दूसरों की बड़ाई से, और जो मरूबियत का शिकार है ना, जो दूसरों का रोब हमारे दिलों में, अल्लाह ताला हमें उससे निकाल दे। इसलिए कि जब तक दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई नहीं आती ना, तब तक बड़े बड़े काम नहीं होते। इंसान अपनी इस बेकार सी ज़िंदगी को कारामत बनाता ही कब है? जब अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास होता है। और किसी बड़े के नाम के साथ इंसान का नाम जुड़ जाए ना, लोग इसके लिए बड़े पापड़ बेलते हैं कि हाय मेरा नाम फलां बड़ी शख्सियत के साथ लग जाए, लोग मुझे उसके हवाले से जानने लगे। और जब लोग अल्लाह के हवाले से आपको जानते हैं तो क्या आपको इस इज्जत का एहसास होता है? जब लोग आपको इस किताबे मजीद, कलामे मजीद के नाते से जानते हैं, खुशी होती है कि अल्लाह मेरा नाम तेरे नाम के साथ लिया जाने लगा, लोग मुझे देख के तुझे याद करने लग गए, लोग मेरी वजह से तेरे करीब आने लगे। ये एहसास हासिल करने की कोशिश करनी है, और ये काम अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता। कितने ही लोग दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, हर एक को इससे अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपनी बुजुर्गी हमारे दिलों में बिठा दे और हमारे ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी बड़ाई को पैदा कर दे।